आज की बात।
श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे भारत में भीड़ द्वारा हत्या की बढ़ती घटनाओं पर। हमारे साथ रहें। भारत एक ऐसा देश है जिसे संस्कृतियों का संगम कहा जाता है और विविधता पर ही भारत का अस्तित्व टिका है, और ये एक ऐसी वास्तविकता है जिसका उल्लेख भारतीय नेताओं और भारत के जिम्मेदारों ने बारंबार किया है और करते रहते हैं। अभी हालिया दिनों में भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने RSS के मुख्यालय में अपने भाषण में भी इसी प्रकार की वास्तविकताओं का उल्लेख करते हुए कहा था कि बहुलतावाद एवं सहिष्णुता भारत की आत्मा है, और धार्मिक मत और असहिष्णुता के माध्यम से भारत को परिभाषित करने का कोई भी प्रयास देश के अस्तित्व को कमजोर करेगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने इस देश के वर्तमान हालात का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रतिदिन हम अपने आसपास बढ़ी हुई हिंसा देखते हैं। इस हिंसा के मूल में भय, अविश्वास और अंधकार है, और असहिष्णुता से भारत की राष्ट्रीय पहचान कमजोर होगी। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत में हम सहिष्णुता से अपनी शक्ति अर्जित करते हैं और अपने बहुलतावाद का सम्मान करते हैं। हम अपनी विविधता पर गर्व करते हैं।
नेशन इज डिफाइंड एज ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री एंड इनहेबिटिंग ए पर्टिकुलर स्टेट और एरिया। नेशनलिज्म इज डिफाइंड एज आइडेंटिफिकेशन विद वन्स ओन नेशन and support for the interests, especially to the exclusion of interests of other states.
भारत को अपने देश में मौजूद बहुलतावाद पर नाज है, और इसके साथ ही विश्वगुरु के रूप में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को मनवाने की जिद भी है, और ये जिद सत्ताधारी सरकार और विशेषकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बहुत ज़्यादा नज़र आती है। कम से कम वो इसका उल्लेख बहुत ज़्यादा करते हैं।
और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मेरे आंख के सामने भारत मां का वो रूप देख रहा हूं, उस जगत जननी का रूप देख रहा हूं, फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। वो विश्व का नेतृत्व करती होगी, वो विश्व की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का सामर्थ्य रखती होगी। मेरी स्वामी विवेकानंद जी की इस दीर्घ दृष्टा पर अपार श्रद्धा है, और इसलिए मैं भी विश्वास से कहता हूं कि विवेकानंद जी कभी गलत नहीं हो सकते। आपको विश्वास है ये देश फिर से उठ खड़ा होगा, ये देश ताकतवर बनेगा, हम सामर्थ्य के साथ मानव जात की सेवा कर पाएंगे।
लेकिन इस प्रकार की अच्छी अच्छी बातों के बीच भारत से बुरी खबरें ज्यादा हैं। द वायर ने लिखा है कि बीते कुछ समय में भारत में भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कभी गोरक्षा के नाम पर, कभी गोमांस रखने के नाम पर, तो हालिया समय में बच्चा चोरी के आरोप लगाकर भीड़ द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में लोगों को पीट पीट कर मारा गया। 2015 में अखलाक की मौत से शुरू हुआ यह सिलसिला। पहले गोमांस, गोरक्षा और गोरक्षक तक सिमटा हुआ था, अब इसमें बच्चा चोरी की अफवाहों ने भी जगह बना ली है। बीते सप्ताह महाराष्ट्र के धुले जिले में ग्रामीणों ने बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का सदस्य होने के संदेह में 5 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर हमले की एक घटना में भी स्थानीय लोगों ने संदेह में 2 लोगों को बुरी तरह पीट दिया कि वे एक बच्चे के अपहरण की कोशिश कर रहे थे। उससे कुछ ही दिन पहले वेल्लोर जिले में हिंदी भाषी एक व्यक्ति को भी बच्चा चोर होने के शक में ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला था। वहीं असम के सोनितपुर में एक गाँव में भीड़ ने मानसिक रूप से कमजोर एक महिला को बच्चा चोर समझकर खंभे पर बांध कर प्रताड़ित किया। त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में बच्चा चोर होने के संदेह में त्रिपुरा सूचना एवं संस्कृति विभाग के एक सदस्य सहित 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भी बच्चा चोर गिरोह का सदस्य समझकर माड़ा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने बहुरूपिये का स्वांग करने वाले एक युवक की बेरहमी से पिटाई की थी। गुजरात से भी बच्चा चोरी की अफवाह पर हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ दिन पहले गुजरात के कई शहरों में अफवाह के चलते पीट पीट कर मारने के मामले सामने आए हैं। अहमदाबाद में बच्चा चुराने के शक में एक भीड़ ने 40 वर्षीय महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी। गो हत्या के शक में ही मध्य प्रदेश के सतना जिले के अमगार गांव में भी 17 मई को 2 मुस्लिम युवकों पर ग्रामीणों ने मवेशी चोरी और गोवंश की हत्या का आरोप लगाकर हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई थी और दूसरा कोमा में चला गया था। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में ग्रामीणों ने बीते 23 जून को बच्चा चोर होने के संदेह में एक विक्षिप्त व्यक्ति को कथित रूप से पीट पीट कर मार डाला था। जून महीने में झारखंड के गोड्डा जिले में बनकट्टी गांव में मवेशी चोरी के आरोप में सिराबुद्दीन अंसारी और मुर्तजा की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। तो श्रोताओं, ये तो द वायर का आंकड़ा था जो उसकी वेबसाइट पर मौजूद है। भारत में पीट पीट कर लोगों की हत्या करने की बढ़ रही घटनाओं के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि लिंचिंग की ये घटनाएं नफरत और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति का परिणाम है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, नफरत और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति से हमारे सामाजिक ताने बाने को अपूर्णीय क्षति पहुंच रही है। अलबत्ता राहुल गांधी फिलहाल विपक्ष में हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सत्ता पक्ष में आने के बाद क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। फिलहाल सत्ता पक्ष के मंत्री जयंत सिन्हा की चर्चा है, जिन्होंने हत्या के आरोपियों को फूल माला पहनाया और जमानत पर रिहा होने के बाद उनका स्वागत किया। अलबत्ता केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने अपनी सफाई भी पेश की।
ये जो अलीमुद्दीन अंसारी के हत्याकांड में हुआ, उसमें जो दोषी हैं उन्हें पूरी सजा मिलनी चाहिए। जो हुआ बहुत गलत हुआ, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और मैंने ट्विटर पर भी कहा है कि कोई भी विजिलेंटिज्म, जो भी कोई कुछ कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है। रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, हमारे संविधान में सर्वोपरि है। रूल ऑफ लॉ को हम लोगों को किसी भी हालत में सुरक्षित रखना है। जब ये लोग रिहा हुए, इन्हें जब बेल मिला, तो वो हमारे घर आए, मैंने उनको शुभकामनाएं दी और जो आगे न्याय की प्रक्रिया है वो चलेगी और उसे चलने दीजिए। जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी, जो निर्दोष हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इसलिए किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कानून पे किसी का उल्लंघन करने का कोई हक नहीं है, ना हम लोग होने देंगे।
हत्या के आरोप में पकड़े गए लोगों का सार्वजनिक अभिनंदन करने वाले जयंत सिन्हा नरेंद्र मोदी कैबिनेट के अकेले मंत्री नहीं हैं। उनसे पहले भी भारत के संस्कृति मंत्री महेश शर्मा लिंचिंग के एक अभियुक्त के मरने पर उसके शव के सामने नमन की मुद्रा में झुके। राजस्थान के वरिष्ठ बीजेपी नेता और गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने पिछले साल गोरक्षक भीड़ के हाथों खुली सड़क पर मारे गए पहलू खान की हत्या पर दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराया था। इस संदर्भ में AMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार अपने विचार प्रकट किए।
इखलाक की भी खबर बन गई, जुनेद की भी खबर बन गई, हासिम की भी खबर बन गई, अलीमुद्दीन की भी खबर बन गई। राजस्थान में हमारे एक भाई को मार मार कर उसकी खबर बना दिया गया। वजीर आजम, आप कबीर की खबर पर गए, क्या आप में हिम्मत है?
मैडम, पिछले 3 साल में जो मॉब लिंचिंग के वाकयात हमारे मुल्क में पेश आए हैं, इससे हमारी आंखें खून के आंसू होती है, रूह तड़पती है, जिस्म कांपता है और दिल लहूलहान होता है। और मैं आपको वाजे तौर पर कहना चाह रहा हूं मैडम कि ये वाकयात नहीं खत्म होंगे। इसलिए नहीं खत्म होंगे क्योंकि ये सरकार रिलीजन को आइडियोलॉजी के तौर पर प्रमोट कर रही है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जिस दिन ये सरकार रिलीजन को या फेथ को मानेगी, आइडियोलॉजी तौर पर नहीं, ये वाकयात खत्म होंगे। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि क्यों खत्म नहीं होंगे, जब तक बीजेपी कल्चरल नेशनलिज्म को मानेगी, इस मुल्क में मॉब लिंचिंग होते रहेगी, दलित और मुसलमान मारे जाते रहेंगे। जिस दिन बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म को अपनाएगी, मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी। तीसरी बात मैडम, यह सरकार अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में सरासर नाकाम साबित हुई है, ये किसी की भी जान बचाने में नाकाम साबित हुई है। इन्हीं के कर्नाटक में लोग मारे गए, केरल में मारे जा रहे हैं, और फिर पूरे मुल्क में इन्हीं की रियासतों में जहां पर ये इख्तदार पर है मुसलमानों और दलितों को टारगेटेड किलिंग हो रही है। मैडम मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि क्या सरकार काउ प्रोटेक्शन को, क्या ये हिंदू रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस है? जिस तरह सिखों में 5 ककार है, मुसलमानों में रोजा, रमजान, दाढ़ी है, अगर ये डिसाइड करें काउ प्रोटेक्शन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, आप नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट को दीजिए, तय करिए। आप एडवाइस चाहते हैं, सजेशन दे रहा हूं मैडम। और एक आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूं मैडम, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वजीर आजम इसराइल को गए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वजीर आजम ने एक यतीम बच्चे को अपने करीब बुलाया, उस पर रहम किया, उस पर दस्त शफकत रखा। मैं आपके जरिए से वजीर आजम से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह वजीर आजम ने एक मोशे नामी बच्चे को, जिसके वालिदैन को पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने जान से मार दिया था, क्या हमारे वजीर आजम अपने घर में इखलाक के बेटे को बुलाएंगे, जुनेद के भाई को बुलाएंगे, अयूब खान के खानदान वालों को बुलाएंगे, कर्नाटक में आपके लोगों को मारने वालों को बुलाएंगे? बुलाकर उनको गले से लगाए वजीर आजम? अगर मोशे को गले से लगा सकते हैं तो यहाँ पर जिन लोगों ने उनको मारा वो भी टेररिस्ट से कम नहीं है मैडम।
भीड़ के हाथों हत्या पर एक इंटरव्यू में भारत के प्रसिद्ध पत्रकार रवीश कुमार ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं।
इस भीड़ ने सबको डरा दिया है, उनको भी डराया है जो राजनीतिक या विचारधारा के हिसाब से उस भीड़ की हिंसा को भले न सपोर्ट करते हों, पर वो भीड़ के जो तत्व आते हैं, एलिमेंट आते हैं, जिस पॉलिटिकल धारा से आते हैं, उसको तो सपोर्ट करते हैं। वो लोग भी डरे हुए हैं, वो लोग भी हमारा आपका स्वभाव है कि हम कोई भी बात से अलग हटकर कुछ कहना चाहते हैं, वो लोग भी कुछ अलग कहने का जोखिम नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस भीड़ ने समाज को एक तरह से डराया तो है, डरा दिया है, और इसका उद्देश्य यही है कि घटना पलवल में होगी लेकिन डर जो है वो गोरखपुर में पैदा किया जाएगा, डर देवघर में पैदा किया जाएगा, डर जो है वो हो सकता है कि पुणे में पैदा किया जाए या फिर औरंगाबाद में पैदा कर दिया जाए। तो ये इस भीड़ का एक तरह से आफ्टर इफेक्ट जो हम कह रहे हैं, रिपल इफेक्ट है, वो ये है कि हर बार, हर कुछ समय के बाद ये भीड़ की हिंसा लौट कर आती है और उस डर को रिन्यू करती है सोसाइटी में, कि एक तरह से जैसे लाइसेंस को रिन्यू करते हैं, उस डर को, उस फेयर को रिन्यू करके चली जाती है।
वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री की डांट और उनके मंत्रियों की पुचकार एक ही रणनीति का हिस्सा है। जब बहुत आलोचना होने लगे तो प्रधानमंत्री डांट दें, लेकिन गोरक्षकों के काले सफेद को लगातार उचित ठहराया जाए और उनकी पीठ पर मंत्रियों का वरदहस्त बना रहे। मुसलमानों में भय बनाकर रखना उस राजनीति की मजबूरी और लक्ष्य है जिसके पास हिंदुओं को एकजुट करके एक राजनीतिक ताकत में बदलने का कोई और फार्मूला है ही नहीं। राजेश जोशी लिखते हैं, हिंदुओं को एकजुट करके एक राजनीतिक ताकत में बदलने का कोई और फार्मूला नहीं है। जब तक वो मुसलमानों के एक बड़े हिस्से को हिंदुओं और भारत के दुश्मन के तौर पर चिन्हित करने में कामयाब नहीं होंगे, तब तक वो जातियों में बटे हिंदू समाज को किसके खिलाफ एकजुट करेंगे।